आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। दो तिहाई बहुमत नहीं मिलने से लोकसभा में पारित नहीं हो सके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से जुड़े तीनों विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार को मामले की जांच कराने की सौंपी जिम्मेदारी। और प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए लागू की न्यूनतम मजदूरी, अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3,288 रुपए और बाकी जिलों के श्रमिकों को 1,335 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक यानी 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 सहित तीनों विधेयक लोकसभा में दो तिहाई बहुमत नहीं मिल पाने के कारण पारित नहीं हो सके। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 मत पड़े। इस विधेयक के पारित न होने के कारण परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के लिए पेश नहीं किया गया। लोकसभा की बैठक आज तक के लिए स्थगित कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग सोशल मीडिया पोस्ट में आश्वस्त किया कि सरकार ये अधिनियम लागू करने के लिए कटिबद्ध है। श्री मोदी ने अपने एक पोस्ट में कहा कि संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि हम इस भ्रम में ना रहें कि देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, ये उसका हक है जिसे दशकों से रोका गया है। विधेयक पारित ना होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष ने इस विधेयक का समर्थन ना करके ऐतिहासिक अवसर गवा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं का गुस्सा झेलेगी। इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि संविधान में परिसीमन के प्रावधान किए गए हैं और इससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्क संगत वितरण होगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि होगी।
परिसीमन के प्रावधान से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें भी बढ़ने का प्रावधान है। तो एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वो SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का विरोध कर रहा है।
श्री शाह ने कहा कि इस परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा की सीटों में वृद्धि का प्रावधान है।
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल की अभी स्ट्रेंथ है 129, 23.76%। अब 50% वृद्धि कर जब ये पांचों राज्यों की सीटों का हम आवंटन करते हैं, 129 के बढ़कर सीटें 195 होगी, जिसका 816 में प्रतिशत 23.87 आए।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक नहीं है और इसका महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है।
द फर्स्ट ट्रूथ, सच तो ये है कि ये कोई महिला सशक्तिकरण विधेयक नहीं है, इसका महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण विधेयक इसी सदन ने वर्ष 2023 में पारित किया था। ये विधेयक तो भारत के चुनावी मानचित्र को बदलने का एक प्रयास है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की निंदा करते हुए श्री राहुल गांधी से माफी की मांग की। श्री राजनाथ ने राहुल गांधी के भाषण से ऐसी टिप्पणियां हटाने को कहा।
इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे। बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता के मामले में उन पर FIR दर्ज करने और आरोप की जांच कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की कोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह या तो खुद इस मामले की जांच करे या जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दें। यह निर्देश भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की एक याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ के एक विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों के विरोध और मजदूरी बढ़ाने की मांग के बाद प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। नई दरों को बीते 1 अप्रैल से लागू करने संबंधी अधिसूचना कल जारी कर दी गई। एक रिपोर्ट।
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को 3 श्रेणियों में बांटा गया है और हर श्रेणी के लिए अलग अलग मजदूरी दरें तय की गई हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद को श्रेणी 1 में रखा गया है। अन्य नगर निगमों वाले जिले श्रेणी 2 में हैं, जबकि बाकी सभी जिले श्रेणी 3 में शामिल किए गए हैं। अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कुशल श्रमिकों को मार्च की तुलना में 3,288 रुपए प्रति माह ज्यादा मिलेंगे। प्रदेश के अन्य नगर निगमों व जिलों में कार्यरत श्रमिकों की भी मजदूरी कम से कम 1,335 रुपए बढ़ेगी। सरकार ने नई मजदूरी दरों को अंतरिम राहत के रूप में लागू करने का फैसला किया है। इन्हें जल्द ही सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। समाचार कक्ष से अरुण।
उधर गौतम बुद्ध नगर में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वाले 24 कारखानों से जुड़े 203 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त करने, धनराशि की वसूली करने और संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से खुल गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अराघची ने कहा कि इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष विराम के अनुरूप जल डमरू मध्य पूरी तरह से खोल दिया गया है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पूर्ण आवागमन के लिए खोल दिया है। इस घोषणा के बाद तेल के मूल्यों में 11% से अधिक की गिरावट आई है। उधर केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति स्थिर है। नई दिल्ली में कल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि अब तक 5 किलो वाले 16,50,000 से अधिक सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान से 2,361 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया है। दुग्ध विकास और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कल लखनऊ में 2 दिवसीय दुग्ध स्वर्ण महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया। महोत्सव में डेयरी क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से इच्छुक निवेशकों के साथ लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर MOU भी किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आज डेयरी क्षेत्र प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह क्षेत्र न केवल रोजगार सृजन का प्रमुख साधन है, बल्कि राज्य के सकल मूल्य वर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के लगभग 10,000 पशुपालक, दुग्ध उत्पादक और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश भर में 8वें पोषण पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश की महिला और बाल विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव लीना जौहरी ने बताया कि अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं, गर्भस्थ शिशु और नवजात बच्चों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 2/3 बहुमत नहीं मिलने से लोकसभा में पारित नहीं हो सके नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संवैधानिक संशोधन से जुड़े 3 विधेयक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, लोकतंत्र की जननी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार को मामले की जाँच कराने की सौंपी जिम्मेदारी। और प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए लागू की न्यूनतम मजदूरी, अब गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह 3,288 रुपए और बाकी जिलों के श्रमिकों को 1,335 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।